रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कर्ण कल मर गया, सारी कौरवी सेना हताश हो गई, और इस कर्ण पर्व की कथा सुनता है उसके लिए बताया कि एक बरस तक जो आदमी बछड़ों सहित गऊ का दान करता है उसको जो फल मिलता है वो कर्ण पर्व के एक बार सुनने मात्र से मिल जाता है। कर्ण पर्व के बाद अब शल्य पर्व चलता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण तो नारायण है और नरावतार अर्जुन है, उनकी लीला को प्रकट करती है देवी सरस्वती, और उसको लिखने वाले, उसको कहने वाले व्यास जी महाराज, और ये महाभारत रूपी ग्रंथ सबके हृदय में आसन लगा करके विजय प्राप्त करने वाला, इन सबको नमस्कार करते हैं। कर्ण के मर जाने के बाद धृतराष्ट्र बड़ा दुखी हुआ, बड़ी मुश्किल से उसको होश आया। फिर उसने पूछा, संजय, कौरव सेना का संचालन करने वाले सूत पुत्र के मर जाने के बाद मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन ने और उसके भाइयों ने क्या किया? क्या कारण है कि मेरे पुत्र जिस जिस को सेनापति बनाते हैं उसी उसी को पांडव लोग थोड़े ही समय में मार डालते हैं? मैंने अभी तक एक भी पांडव को मरा हुआ नहीं सुना, और कौरवों में हमारी सेना में जो जो महारथी वे वो सब एक एक करके खिसक रहे हैं। कारण क्या है? देखो, तुम लोगों के देखते देखते भीष्म मारे गए, द्रोण की भी ये दशा हुई, अब एक प्रतापी कर्ण था वो भी जाता रहा। ओहो, मुझे महात्मा विदुर ने पहले ही कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से प्रजा का नाश होगा। उन्होंने उस समय बहुत सोच विचार के कहा था, परंतु मैंने अपने पुत्र के मुंह में आकर उनकी बात की कोई परवाह नहीं की। जो उन्होंने कहा वो आज ज्यों का त्यों सत्य हो रहा है। संजय, उस वक्त मेरी बुद्धि प्रारब्धवश मारी गई थी, इसलिए मैंने उनके कहने के अनुसार काम नहीं किया। संजय, अब मेरे उस अन्याय के फल का पुनः वर्णन करो। कर्ण के मारे जाने पर कौन मेरी सेना का प्रधान बना? किस महारथी ने कर्ण तथा अर्जुन का सामना किया? किस महारथी ने श्री कृष्ण और अर्जुन का सामना किया? संजय ने कहा, महाराज, कौरव और पांडवों के आपस में भिड़ने से जो महान नरसंहार हुआ उसकी कथा कहने वाले सुनने वाले सब द्रवित हो जाते हैं, उनका भी हृदय टूट टूट हो जाता है। जो वहां सैनिक थे उनके तो कहना ही क्या है। आप सावधान होकर सुनिए, नौका से व्यापार करने वाले व्यापारी जैसे अगाध जल में नाव टूट जाने पर घबरा जाते हैं, उसी प्रकार कौरवों के आश्रयभूत कर्ण के मारे जाने पर आपके सैनिक थर्रा उठे। वे अनाथ के भांति रक्षक ढूंढने लगे। संध्या के समय अर्जुन से परास्त होकर जब हम लोग छावनी में लौटे, उस समय कर्ण की मृत्यु से डरकर आपके सभी पुत्र इधर उधर भाग रहे थे। उनके कवच नष्ट हो गए थे, किस दिशा में जाना है इसका भी उन्हें पता नहीं था। एक ही बात उनके मन में थी कि भगो यहां से, हम हमारी जान को कैसे बचाएं। सब सुध बुध खो बैठे, वे आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। उनको अपने परायों का भी ज्ञान नहीं रहा। बहुत से महारथी भय के कारण घोड़ों हाथियों और रथों पर सवार होकर, अब किसका घोड़ा है, किसका हाथी है, किसका रथ है, कौन देखे, जो हाथ में आया उसको लिया रवाना हुआ। इस भयंकर संग्राम में जब हाथी एकदम महावत से शून्य होकर इधर उधर दौड़ने लगे तो उन हाथियों को जो रथ मिला उस रथ को तोड़ दिया। महारथियों ने घुड़सवारों को मार डाला और रणभूमि में भागने वाले पैदलों को घोड़ों से कुचल डाला। ये सब घबराहट के कारण, अपना पराया ज्ञान न होने के कारण से हुआ। इसी समय, अब बहुत ध्यान से, कृपाचार्य जी ने आकर दुर्योधन से कहा, दुर्योधन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो और अच्छा लगे तो उसके अनुसार काम करो। देखो पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, जयद्रथ, तुम्हारे बहुत से भाई, तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण, ये सब तो मारे जा चुके हैं। अब कौन बच गया है जिसका आश्रय लेकर हम युद्ध करें? जिन वीरों पर युद्ध का भार रखकर हम राज्य पाने की आशा करते थे, वे तो शरीर छोड़कर वेद वेत्ताओं की गति को प्राप्त हो गए। हमने बहुत से राजाओं को मरवाकर अपने गुणवान महारथियों को खो दिया है। उनके बिना अब हम अकेले रह गए हैं। ऐसी दिशा में हमें दीनतापूर्ण बर्ताव करना चाहिए। यह अभिमान, आक्रोश और अपनी अकड़ नहीं रखनी चाहिए। जब सब लोग जीवित थे तब भी अर्जुन किसी के द्वारा परास्त नहीं हुए। कृष्ण जैसे सारथी के होते हुए उन्हें देवता भी नहीं जीत सकता दुर्योधन, और फिर उनके ध्वजा पर रहने वाला वो वानर उनकी ध्वजा को पकड़ा हुआ है और हमारी विशाल सेना उसके गर्जना से थर्रा उठती है। भीमसेन का सिंहनाद, पांचजन्य की टंकार, गांडीव धनुष की भयंकर आवाज, ये सब हम लोगों के दिलों को तोड़ने वाली नहीं है? अर्जुन के हाथ में डोलता हुआ सुवर्ण से जटित महान धनुष चारों दिशाओं में चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है? जैसे मेघ की घटाओं में बिजली दिखाई देती है ऐसे वो चमकता है। जिस प्रकार वायु की प्रेरणा से बादल इधर उधर उड़ते फिरते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हाके हुए घोड़े जो सुनहले साजों से सजे हुए अर्जुन की सवारी में दौड़ते हैं। अर्जुन अस्त्र विद्या में कुशल है, उन्होंने तुम्हारी सेना को उसी प्रकार भस्म कर दिया है जैसे भयंकर आग घास को ढेरी को जला डालती है। वे धनुष की टंकार से हमारी योद्धाओं को उसी प्रकार भयभीत करते हैं जैसे सिंह मृगों को करते हैं। आज इस भयंकर संग्राम को प्रारंभ हुए 17 दिन बीत गए हैं। महासागर में हवा के थपेड़े खाकर डगमगाती हुई नौका की तरह आपकी सेना को अर्जुन ने खपा डाला है। विचार करो, उस दिन जयद्रथ को अर्जुन के बाणों का निशाना बनाते देखकर तुम्हारा कर्ण कहां चला गया था? अपने अनुयायियों के साथ आचार्य द्रोण, मैं, तुम, कृतवर्मा और भाइयों सहित दुशासन, ये लोग जयद्रथ वध के समय कहां गए थे? सब वहीं तो थे, पर चली किसी पर अर्जुन की? पर क्या अर्जुन पर आपकी चली? क्या अर्जुन की आप पर नहीं चली? अर्जुन का जोर सबके ऊपर चला और हम लोग देखते रह गए। तुम्हारे संबंधियों, भाइयों, सहायकों तथा मामाओं को उन्होंने अपने पराक्रम से जीत लिया और तुम्हारे देखते देखते सबके सिर पर पैर रखकर जयद्रथ को मार डाला। अब हम किसका भरोसा करें? कौन यह ऐसा पुरुष है जो अर्जुन पर विजय प्राप्त कर लेगा? उसके पास नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र हैं, उनके गांडीव की टंकार सुनकर हम लोगों का धैर्य छूट जाता है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि अंधकारमयी है, उसी प्रकार हमारी सेना सेनापति के बिना श्रीहीन हो रही है। सभी योद्धा घबराए हुए हैं। उधर देखो, सात्यकी, भीमसेन और दूसरे लोग कितने मदोन्मत्त होकर इस समय नाच रहे हैं। ये भीमसेन समस्त पर्वतों को फाड़ सकता है, समुद्रों को सुखा सकता है। राजन, द्यूत सभा में भीमसेन ने जो बात कही थी उसे उसने सत्य करके दिखा दिया। आगे भी वो ऐसा ही करेगा। दुशासन के वध को तुमने अपनी आंखों से देखा है, कोई भीमसेन के पास जा सका क्या? उसने सबको ललकारा है। उस समय उसने सारी सभा को ललकार दिया और युद्ध भूमि में तुम सबको ललकारा, कोई उसके पास नहीं पहुंचे और उसने सत्य करके दिखाया। ये पांडव सज्जन है, किंतु तुम लोगों के साथ अकारणी बहुत से अनुचित व्यवहार किए गए। तुम लोगों के द्वारा उनके साथ अकारणी बहुत से अनुचित व्यवहार किए गए, अब उन्हीं का फल तुमको मिल रहा है। तुमने यत्न करके सारे जगत के लोगों को अपनी रक्षा के लिए एकत्रित कर लिया, किंतु तुम्हारा ही जीवन संदेह में पड़ा हुआ है। दुर्योधन, अब तुम अपने को बचाओ। बृहस्पति जी ने एक बात कही है नीति की, वो सुनो। जब अपना बल कम या बराबर का हो तो शत्रु से संधि कर लेनी चाहिए। लड़ाई तो तभी करनी चाहिए जब अपने में शक्ति ज्यादा हो और शत्रु हमसे निर्बल हो, तब लड़ाई की शोभा होती है। बल और शक्ति में हम पांडवों से कम हो गए हैं, अतः मेरी राय में अब आपको उनके साथ संधि कर लेनी चाहिए। जो राजा अपनी भलाई की बात नहीं जानता वह श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान करता है और शीघ्र ही वो राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, उसका भला भी नहीं होता है। यदि राजा युधिष्ठिर के सामने झुकने से हम लोग राज्य पा जाए तो इसमें अपनी भलाई है। मूर्खतावश हारे जाने में कोई लाभ नहीं है। राजा धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर तुम्हें राज्य दे सकते हैं। श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये सब उनकी बात मान लेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा विश्वास है श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की बात कभी नहीं टालेंगे और युधिष्ठिर कृष्ण की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। इसलिए मैं संधि करने में कुशल देखता हूं, पांडवों के साथ लड़ाई में कोई लाभ नहीं है। तुम ये न समझना कि मैं कायरतावश या अपने प्राण बचाने के लिए ऐसी बात कह रहा हूं। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कहता हूं। यदि इस समय मेरा कहना नहीं मानोगे तो मरते समय तुम्हें ये मेरी बात याद आएगी। कृपाचार्य की बात सुनकर दुर्योधन जोर जोर से गर्म उसास खींचता हुआ कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने कहा, हे विप्रवर, एक हितेशी को जो कहना चाहिए वो सब आपने कह सुनाया। यही नहीं, प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हुए आपने मेरी भलाई के लिए सब कुछ किया है, इसे मैं हृदय से स्वीकार करता हूं। यद्यपि हित चिंतक होने के नाते आपने मेरे भले के लिए ही यह बात बताई है, तब भी मैं आपकी बात को पसंद नहीं करता हूं। इसलिए पसंद नहीं है, वैसे ही पसंद नहीं है जैसे मरने वाले रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती। राजा युधिष्ठिर महान धनी थे। विचार करो कृपाचार्य, अब सुनिए गहरी बात बोलता है। राजा युधिष्ठिर महान धनी थे, मैंने उन्हें जुए में जीत कर दर दर का भिखारी बना दिया, राज्य से बाहर निकलवा दिया। अब वे मुझ पर विश्वास करेंगे? मेरी बात उनके हृदय में बैठेगी? नहीं बैठेगी। श्री कृष्ण मेरे यहां दूत बनकर आए थे, किंतु मैंने उनके साथ धोखा किया, अब वो मेरी बात मानेंगे? सभा में बलात् लाई हुई द्रौपदी ने जो विलाप किया था तथा पांडवों का जो राज्य छीन लिया गया था उसके लिए श्री कृष्ण को अब तक क्रोध आता है। और हे कृपाचार्य जी, ध्यान से सुनना, हे कृपाचार्य जी, श्री कृष्ण और अर्जुन दो शरीर मात्र हैं, एक प्राण है, वे दोनों एक दूसरे के अवलंबन हैं। पहले तो ये बात मैंने केवल सुनी सुनी थी, किंतु अब इसे मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। जब से उन्होंने अपने भांजे अभिमन्यु का मरण सुना है, तब से कृष्ण रात में सुख की नींद नहीं सोते हैं। पांडव लोग तो आराम करते हैं, लेकिन कृष्ण को नींद नहीं आती है। हम लोग उनके अपराधी हैं, वो कृष्ण हमें क्षमा नहीं कर सकेंगे। महाबली भीमसेन का स्वभाव बड़ा कठोर है, उसने बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा की है। सच पूछा जाए तो सभा के अंदर जब उसने क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा की थी, मेरा हृदय उसी समय बैठ गया था। वो सूखे काठ की तरह टूट भले ही जाए, पर भीमसेन झुक नहीं सकता। नकुल और सहदेव यमराज के समान भयंकर हैं, वे दोनों मुझसे बहुत बैर रखते हैं। धृष्टद्युम्न और शिखंडी का भी मेरे साथ बैर है, ये सब मेरे हित की बात कब सोचेंगे। और पांडवों के तो हर क्षण वो दिन याद आता है, द्रौपदी एक वस्त्र पहने हुए थी, रजस्वला थी, उस अवस्था में वह सभा में लाई गई और दुशासन ने सबके सामने उसे क्लेश पहुंचाया। उसके वस्त्र का उतारा जाना, उसकी दीन अवस्था में पुकारना, ये पांडवों को हर श्वास श्वास के अंदर याद आता है। अब उन्हें कोई युद्ध से रोक नहीं सकता है। कृपाचार्य, जब से द्रौपदी को क्लेश दिया गया है, तभी से मेरे विनाश का संकल्प लेकर मिट्टी की वेदी पर सोया करती है द्रौपदी, कभी पलंग पर नहीं सोई है। जब तक बैर का पूरा बदला न चुका लिया जाए, तब तक उसने ये व्रत ले रखा है, जमीन पर सोऊंगी। इस प्रकार बैर की आग पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो चुकी है। कृपाचार्य जी, मैंने सुना है द्रौपदी ने अपनी चोटी खुली रख रखी है, इसलिए यह बैर आपके हमारे बातों करने से समाप्त होने वाला नहीं है। अभिमन्यु का नाश हो गया और किस बेहुदे तरीके से युद्ध के नियमों को ताक में रखकर हमने अभिमन्यु को मारा है, उस अभिमन्यु के पिता अर्जुन के साथ मेल हो जाएगा? असंभव है। जब मैं समुद्र पर्यंत पृथ्वी का एक छत्र राजा होकर उसका पूरा उपयोग कर चुका हूं, तो अब इस समय पांडवों का एक कृपा पात्र बनकर उनके छोड़े हुए राज्य को मैं भोगूं, कैसे संभव है? समस्त राजाओं का सिरमोर होकर अब मैं दास के भांति युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलूं? असंभव। दीनतापूर्ण जीवन क्यों कर व्यतीत करूं? मैं आपकी बातों का खंडन या तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि आपने स्नेहवश मेरे हित के लिए बात कही है। मैं तो केवल अपना विचार प्रकट रख रहा हूं। मेरे मन में यह आता है कि अब संधि का अवसर नहीं रहा। इस समय संधि की चर्चा चलाना किसी तरह उचित नहीं जान पड़ता। मुझे अब युद्ध में ही सुंदर नीति दिखाई दे रही है, युद्ध करो, यही नीति है। इस समय भयभीत होकर कायरता दिखाने नहीं, उत्साह के साथ युद्ध करने का समय है। मैं पांडवों के सामने दीनतापूर्ण वचन नहीं कह सकता। कृपाचार्य जी, संसार में कोई भी सुख सदा रहने वाला नहीं, फिर राष्ट्र और यश ये कैसे एक जैसा रहेगा? यहां तो कीर्ति का ही उपार्जन करना चाहिए, और कीर्ति युद्ध के बिना किसी और उपाय से नहीं मिल सकती। घर में खाट पर सोकर सड़ सड़ कर करके मरने की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए युद्ध के अंदर हंसते हंसते अपना प्राण दे देना ये बहुत बड़ा धर्म है। बड़े बड़े यज्ञ करके वन में या संग्राम में शरीर त्याग करने में क्षत्रिय की शोभा है। जिसका बुढ़ापे के कारण शरीर जर्जर हो गया, रोग पीड़ा दे रहा है, परिवार के लोग आसपास खाट के चारों तरफ बैठे हैं, ऊपर ऊपर से मोर प्रेम दिखा करके रोते हैं, उस समय में दीनतायुक्त वचन बोलकर विलाप करते करते प्राण त्यागने वाला क्षत्रिय मर्द कहलाने वाला नहीं है, वो नरकों में जाता है। अतः जिन्होंने नाना प्रकार के भोगों का त्याग करके उत्तम गति प्राप्त की है, उस इस समय युद्ध के द्वारा मैं अकेले ही लोक में जाऊंगा, उनके ही लोक में जाऊंगा। जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, युद्ध में पीठ नहीं दिखाते हैं, सूरवीर सत्य प्रतिज्ञ नाना प्रकार के यज्ञ करने वाले हैं, शस्त्र की धारा में अवृत स्नान जिन्होंने किया है, उनका स्वर्ग में निवास होता है। और विचार कीजिए कृपाचार्य जी, इसी युद्ध में हमने भीष्म जी को खोया है, गुरु द्रोणाचार्य को खोया है, महारथी कर्ण को खोया है, इसके अलावा कितने राजा लोग मरे हैं। भला इन मित्रों भाइयों से हीन होकर अब मैं पांडवों के पैर में पड़कर अपने जीने के लिए या राज्य के लिए मैं उनसे संधि कर लूं, तो फिर उनके बलिदान का क्या होगा, जो मेरे लिए मरे उनका क्या होगा। इसलिए मैं किसी प्रकार संधि का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता हूं। युद्ध में अपनी शक्ति पूरी लगाकर बल पौरुष के साथ मरूंगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि मेरा प्रारब्ध श्रेष्ठ होगा तो अपनी शक्ति से उपार्जित राज्य का भोग करूंगा। करूंगा तो मैं अपनी शक्ति से ही, पांडवों के दिए हुए से नहीं। दुर्योधन की बात सुनकर वहां बैठे हुए और राजा लोगों ने भी बहुत अच्छा कहा, धन्यवाद दिया। सबने अपनी पराजय का शोक छोड़कर मनी मन पराक्रम करने की ठान ली। युद्ध करने के विषय में सबका एक निश्चय हो गया, सबके मन में उत्साह बढ़ गया। और उसके बाद सब लोग 8 कोस में फैली हुई जो छावनी थी उसके अंदर जा जाकर के डेरा डालकर सो गए, विश्राम किया और प्रातःकाल फिर रणभूमि की ओर लौटे। संजय कहते हैं, महाराज हिमालय की तराई में विश्राम करने के समय सभी प्रधान प्रधान योद्धा एक स्थान पर इकट्ठे हुए। शल्य, चित्रसेन, शकुनी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, सुसेन, अरिष्टसेन, धृतसेन, जयतसेन आदि राजाओं ने भी वहां रात्रि बिताई। इन सब लोगों ने एकत्रित होकर राजा शल्य के पास बैठे हुए दुर्योधन का विधिवत पूजन किया और युद्ध के लिए प्रयत्नशील होकर कहा, हे महाराज दुर्योधन, तुम किसी को सेनापति बनाकर शत्रुओं के साथ युद्ध करो, क्योंकि सेनापति के अभाव में ये हमारी सेना कहीं बैरियों के हाथ में न पड़ जाए। एक सेनापति के संचालन से सेना मजबूत रहती है। तब राजा दुर्योधन रथ पर सवार होकर महारथी अश्वत्थामा के पास गए। अश्वत्थामा युद्ध की संपूर्ण कलाओं को जानता था। संग्राम में वह यमराज के समान जान पड़ता था, तेजस्विता में सूर्य के समान था, बुद्धिमत्ता में शुक्राचार्य के समान था, सभी प्रकार के उसमें शुभ लक्षण थे, प्रत्येक कार्य में बड़ी निपुणता थी, वैदिक ज्ञान में समुद्र के समान, शत्रुओं को वेग से जीतने वाला और अजेय था, धनुर्वेद के 10 अंग तथा 4 पादों का ठीक ठीक ज्ञान रहता था, 6 अंगों सहित 4 वेद और इतिहास पुराण रूप 5वें वेद का भी ज्ञान था। उस तपस्वी ने कठोर व्रतों का पालन करके बड़े यत्न से शंकर जी की आराधना की थी। उसके पराक्रम और रूप की कहीं तुलना नहीं थी। संपूर्ण विद्याओं का पारगामी और गुणों का समुद्र था तथा सबकी प्रशंसा का पात्र था। उसके पास पहुंचकर दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा जी, आप हमारे गुरु के पुत्र हैं, हम सब लोगों को आपका भरोसा है, अतः आप आज्ञा करें, हम किसे अपना सेनापति बनाएं। अश्वत्थामा ने कहा, हम लोगों में राजा शल्य ही अब ऐसे हैं जो उत्तम कुल, पराक्रम, तेज, यश, लक्ष्मी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न है। देखो, अश्वत्थामा को सेनापति अभी इसलिए नहीं बनाया कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है, युद्ध ये क्षत्रियों का है, इधर युधिष्ठिर रहे तो इधर यही रहने चाहिए, कोई क्षत्रिय होना चाहिए। तो अश्वत्थामा ने कहा, ये हमारे सेनापति होने योग्य हैं शल्य, राजन इन्हीं को सेनाध्यक्ष बनाकर हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। द्रोण कुमार के ऐसा कहने पर सभी योद्धा राजा शल्य को घेर कर खड़े हो गए, उनकी जय जयकार करने लगे। अब उन्होंने बड़े आवेश में भरकर युद्ध का निश्चय किया। राजा शल्य द्रोण तथा भीष्म के समान पराक्रमी थे, एक उत्तम रथ पर बैठे हुए। दुर्योधन ने जाकर रथ से उतरकर उनके सामने भूमि पर खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहा, मित्रवत्सल, आप शूरवीर हैं, इसलिए हमारी सेना के आप अध्यक्ष बनिए। राजा शल्य ने कहा, कुरुराज, आप मुझे सेनापति का सम्मान दे रहे हैं तो मैं तुम्हारे कथनानुसार सब काम करूंगा, मेरे प्राण, मेरा राज्य, मेरा धन, सब कुछ तुम्हारा प्रिय करने के लिए है। दुर्योधन बोला, मैं आपको अपना सेनापति स्वीकार करता हूं, जैसे स्वामी कार्तिकेय ने युद्ध में देवताओं की रक्षा की थी, उसी प्रकार आप भी हमारी रक्षा कीजिए। शल्य ने कहा, दुर्योधन, मेरी बात सुनो, रथ पर बैठे हुए जिन श्री कृष्ण और अर्जुन को तुम महारथियों में श्रेष्ठ समझते हो, वे दोनों बाहुबल में किसी तरह मेरी समता नहीं कर सकते। यदि देवता, असुर और मनुष्यों सहित सारा भूमंडल भी मेरे विपक्ष में आकर खड़ा हो जाए, मैं अकेला सबसे युद्ध कर सकता हूं। पांडवों की तो बात ही क्या है, निस्संदेह तुम्हारी सेना का संचालक बनूंगा और ऐसा व्यू बनाऊंगा जिसे शत्रु भी नहीं लांग सकते। उनका अभिषेक कर दिया गया। उनका अभिषेक होते ही बड़ा सिंहनाद होने लगा और लोग शल्य की स्तुति गाने लगे, महाराज की जय हो, आप चिरंजीवी रहें, आप शत्रुंजय बने, आप तो देवता, असुर, मनुष्य सबको युद्ध में परास्त कर सकते हैं, इन मरणधर्मी सोमकों और सिरंजयों की तो बात ही क्या है। दुर्योधन से कहा शल्य ने, राजन, पांडवों सहित सारे पांचालों का संहार करूंगा या मैं स्वयं मरकर स्वर्ग में चला जाऊंगा। देखें, आज मेरा पराक्रम श्री कृष्ण, अर्जुन, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र सब देखें। आज मैं पांडव सेना को चारों ओर से भगा दूंगा। तुम्हारा प्रिय करने के लिए द्रोणाचार्य, भीष्म तथा कर्ण से भी अधिक पराक्रम दिखाता हुआ रणभूमि में विचरण करूंगा। सब राजा बड़े प्रसन्न हो गए। आपकी सेना में बड़ा सिंहनाद होने लगा। इधर भगवान श्री कृष्ण को किसी गुप्तचर के द्वारा ये समाचार मिला कि अब कौरवी सेना ने अपना सेनापति शल्य को चुन लिया है। तब भगवान श्री कृष्ण की और दुर्योधन की बातचीत हुई। दुर्योधन ने कहा कि हे कृष्ण, यदि दुर्योधन या युधिष्ठिर ने कहा दुर्योधन ने युधिष्ठिर ने कहा हे कृष्ण, यदि दुर्योधन ने मद्रराज शल्य को सेनापति बना दिया है तो बताइए अपने को क्या करना चाहिए। ये सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि भारत, मैं आर्तायन के पुत्र शल्य को खूब अच्छी तरह से जानता हूं, बड़े पराक्रमी, तेजस्वी, युद्ध करने के इतने पैंतरे मालूम है जो बहुत से योद्धाओं को नहीं है। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा थे वैसे ही मद्रराज शल्य भी है। युद्ध में उनका जोड़े का दूसरा कोई योद्धा दिखाई नहीं देता, भूमंडल की कौन कहे देवलोक में भी दूसरा नहीं मिलता। यदि क्रोध में आ जाए भद्रराज शल्य तो उनको कोई नहीं हरा सके। दुर्योधन ने उनका सत्कार करके उसको जो पद दिया है आप इसे गफलत माजी में न रखें। मामा समझकर दया करने की जरूरत नहीं, क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर उन्हें मार डालना होगा, और ये मार डालने का काम हम आप पर सुपुर्द करते हैं, आप इसको मारिएगा, क्योंकि ये भी राजा है आप भी राजा हो। भगवान श्री कृष्ण की और युधिष्ठिर की ऐसी बातचीत हुई और फिर सब अपने अपने शिविरों में जाकर विश्राम करने लगे। खूब आराम से रात बीती, प्रातःकाल हुआ, अपने सब कृत्य करने के पश्चात सब सैनिक लोग इकट्ठे हुए। दुर्योधन ने आज्ञा दी आप सब महारथी तैयार हो और युद्ध भूमि में चलो। वह युद्ध भूमि में डंके बजने लगे, महाराज शल्य को सेनानायक बनाया, फिर कृपाचार्य कृतवर्मा अश्वत्थामा शल्य शकुनी तथा अन्य राजाओं ने आपस में मिलकर सौगंध खाई, क्या हम में से कोई भी अकेला होकर पांडवों से न लड़े, जो अकेला ही उनसे लड़ेगा अथवा जो किसी लड़ते हुए योद्धा को अकेला छोड़ देगा उसे 5 महापातक और 5 उपपातक लगेंगे, इसलिए सब एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ रहते हुए युद्ध करना है। इस प्रकार शपथ लेकर समस्त महारथियों ने मद्रराज को आगे किया और बड़ी शीघ्रता से शत्रुओं पर चढ़ाई कर दी। इसी तरह पांडव भी सेना का व्यूह बनाकर युद्ध की इच्छा से कौरवों पर चढ़ाए। उनकी सेना क्षुब्ध हुए समुद्र के भांति गर्जना कर रही थी। पांडवों की गर्जना सुनकर के आपके पुत्रों के मन में भयंकर भय समा गया। मद्रराज शल्य ने उनको धीरज बनाया और कहा मैं आज सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाकर पांडवों के ऊपर धावा कर रहा हूं, आप लोग हिम्मत रखिए। उस समय सिंधु देश के घोड़ों से जीते हुए विशाल रथ पर बैठे मद्र देश के वीर उनके साथ थे, कर्ण के अजय पुत्र भी उनके साथ थे, शल्य के साथ। उनके चक्कों में दाएं बाएं चक्कों में बड़े बड़े श्रेष्ठ योद्धा लोग थे, चल रहे थे, मोर्चा बंदी हुई। इधर पांडवों ने अपनी सेना को 3 भाग में बांटा, धृष्टद्युम्न शिखंडी और सात्यकी, तीनों के साथ में ये सेना चली। अर्जुन ने कृतवर्मा और संसप्तकों पर चढ़ाई की, भीमसेन और सोमकों का कृपाचार्य पर धावा हुआ, नकुल सहदेव ने शकुनी तथा उलूक पर आक्रमण किया, इस प्रकार कई सैनिक मारे गए। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय भीष्म द्रोण तथा कर्ण के मर जाने के बाद मेरे पुत्रों के पास कितनी सेना बची हुई थी तथा पांडवों के पास कितनी सेना बची गई थी, जिससे मैं ये अनुमान लगा सकूं कि अब विजय किसकी होने वाली है। संजय ने कहा महाराज शल्य के सेनापतित्व में जब हम लोग युद्ध के लिए उपस्थित हुए उस समय हमारे पास 11,000 रथ थे और पांडवों के पास 6,000 रथ थे, कौरवों के पास 10,700 हाथी थे तो पांडवों के पास 6,000 हाथी थे, कौरवों की सेना में 2,00,000 घोड़े थे, पांडवों की सेना में 10,000 घोड़े थे, कौरवों की सेना में 3 करोड़ पैदल वाले थे, पांडवों की सेना में 1 करोड़ पैदल वाले थे, बस इतनी सेना बची थी दोनों में, यही युद्ध के लिए उपस्थित थी। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक इन्हीं में ही लोग मरते रहते थे। धृतराष्ट्र ने कहा तो सेना तो हमारी बहुत बड़ी है, फिर हमारे पुत्रों का मनोबल क्यों टूटता है। संजय ने कहा महाराज जो आपने पहले राजा वो रहते हुए अन्याय किया है, उसका फल सामने आ रहा है। महाराज, पांडवों की मार पड़ने से आपकी सेना जहां की तहां बेहोश होकर इधर उधर भाग रही है। भीमसेन और अर्जुन ने आपके सैनिकों को मूर्छित करके शंख बजाए, सिंहनाद किया, उससे आपके सैनिक घबरा गए हैं। धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी ने धर्मराज को आगे करके शल्य पर धावा बोल दिया है। माद्री कुमार, नकुल और सहदेव ये भी आपकी सेना पर टूट पड़े हैं। फिर पांडवों ने कौरव सेना को अपने बाणों से बहुत घायल कर दिया है। अब कौरव वाहिनी आपके पुत्रों को देखते देखते चारों ओर भागने लगी है। सबको अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ी है। कोई न अपने पुत्रों को पूछता है, न कोई अपने पिताओं को पूछता है, न कोई भाइयों को पूछता है, न कोई पितामहों को पूछता है, न कोई मामाओं को पूछता है। जो जहां जिस प्रकार से जान बचाए उस प्रकार से भगने में लगे हुए हैं। मद्रराज शल्य ने कहा अपने सारथी से, मेरे घोड़े को शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ाओ और युधिष्ठिर जहां खड़े वहां पर मुझे ले जाओ। युधिष्ठिर के पास पहुंचा दिया। अब बड़ा भारी युद्ध होने लगा। मद्रराज को समर भूमि में देख करके कौरव योद्धा भी एक बार वापिस आ गए। इस समय नकुल ने चित्रसेन पर धावा किया और फिर चित्रसेन का नकुल का ऐसा युद्ध हुआ कि अंत में चित्रसेन के रथ पर चढ़कर नकुल ने उसके बाल पकड़ करके और कुंडल मुकुट सहित उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और रथ के पीछे भाग में जा पड़ा। कर्ण का पुत्र सुसेन और सत्यसेन ये दोनों नकुल सहदेव पर टूट पड़े। सत्यसेन ने नकुल के ऊपर अनेक शस्त्रों का प्रहार किया। नकुल ने अपने पास रथ शक्ति थी वो सत्यसेन पर डाल दी और वो वहीं पर जमीन पर धराशायी हो गया। कर्ण का दूसरा पुत्र था सुसेन, क्रोध में भरा नकुल ने उसको बाणों से भस्म कर दिया और उसका मस्तक काट दिया। देख करके सब आश्चर्य करने लगे। उस समय सेनापति शल्य ने आपकी भागती हुई सेना को खड़ी किया और भयंकर सिंहनाद करके धनुष टंकार करके सबके हृदय को जमाया। राजा शल्य से सुरक्षित होने पर पांडव सैनिक निश्चिंत हो गए। उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। युद्ध की इच्छा से शत्रुओं की ओर बढ़ने लगे। उधर से सात्यकी, भीमसेन, नकुल, सहदेव आदि पांडव योद्धा युधिष्ठिर को आगे करके चढ़े और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय अर्जुन कहां थे? संजय ने उत्तर दिया, अर्जुन संसप्तकों का संहार करके कौरवी सेना पर धावा बोल रहे थे। धृष्टद्युम्न आदि वीर भी तीखे सहायकों से आपकी सेना पर बाणों का प्रहार कर रहे थे। उनके मार बनने से कौरव सेना मूर्छित हो रही थी। उन्होंने दिशा विदिशा कुछ भी ध्यान नहीं रखा, भागने लगे। बड़ी उनकी दुर्दशा हुई। पैदल सिपाही कराहने लगे, चिल्लाने लगे। पांडव बलवान थे, वे जब प्रहार करते तो उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। मद्र नरेश ने अपने रथ को युधिष्ठिर के सामने करके उनको तीखे बाणों से बींधना चालू किया। उस समय भांति भांति के अपशकुन हो रहे थे। पांडवों सहित पृथ्वी डोलने लगी, पर्वतों सहित पृथ्वी डोलने लगी। महाराज शल्य ने द्रौपदी के सब पुत्रों नकुल, सहदेव को और धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा सात्यकी को खूब बाणों से बीन दिया। कितने बाणों से उनको घायल कर दिया। शल्य के बाणों से पीड़ित हुए पांडव सेना रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर के पास भगियाई। इस प्रकार सेना को कुचल करके भी युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे राजा शल्य। यह देख युधिष्ठिर ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की, शल्य को बाण वर्षा से घायल किया। इधर शल्य की तरफ से बाण वर्षा हुई। सहदेव ने शल्य का पुत्र था उसका सिर काट दिया। अश्वत्थामा किंचित मुस्कुराकर द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक के दस दस बाण मारे और कृतवर्मा ने भीमसेन के घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। भीमसेन रथ से उतर पड़े और हाथ में गदा लेकर कृतवर्मा के साथ युद्ध करने लगे। कृतवर्मा भी युद्ध के अंदर कूद गया, दोनों का खूब घमासान युद्ध हुआ। इधर शल्य भी सोमक और पांडव योद्धाओं का संहार करते करते तीक्ष्ण बाणों से युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। यद एक भीमसेन वज्र के समान गदा लिए शल्य पर टूट गए। शल्य ने कुपित होकर भीमसेन की छाती में तोमर का प्रहार किया, कवच फट गया, तोमर से छाती बिंद गई, किंतु भीमसेन इसे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने वही तोमर अपनी छाती से लगाकर मद्रराज के सारथी की छाती पर दे मारी, इसलिए उसका सारथी वहीं पर टूट टूट हो गया। भीमसेन ने बड़ी गदा लेकर शल्य पर प्रहार किया। महाराज, इस संसार में मद्रराज शल्य, यदुनंदन बलराम जी और भीमसेन, ये तीन ही बराबर के योद्धा थे। भीम का वेग ये दो ही सह सकते हैं, या तो शल्य और या बलराम जी। इसी तरह शल्य की गदा का वेग भी भीमसेन के सिवा दूसरा कोई सह नहीं कर सकता था। खूब जमकर के लड़ाई हुई। भीमसेन की गदा के आघात से शल्य की गदा भी चिंगारे बरसने लगी। सबको बड़ा दुख हुआ, आश्चर्य हुआ, और गदा की मार से एक ही क्षण में दोनों के शरीर घायल हो गए। दोनों एक जैसे लहूलुहान हो गए। महाराज की गदा से बाएं दाएं भाग भी अच्छी तरह से चोट खाने पर फिर भीमसेन विचलित नहीं हुए। इधर शल्य भी खूब घायल होता हुआ भी विचलित नहीं हुआ। आपस में खूब युद्ध होता रहा। इतने में कृपाचार्य आए और शल्य को अपने रथ में बैठाकर रणभूमि से बाहर ले गए। इधर भीमसेन पलक मारते मारते होश में आए और गदा हाथ में लेकर मद्रराज को युद्ध के लिए ललकारने लगे। तब आपके सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र लेकर पांडव सेना पर टूट पड़े। उस समय आपके पुत्र ने एक प्रास मार करके चकितान की छाती को चीर डाली। वह खून से नहा उठा, प्राणहीन होकर रथ के बैठक में जा बैठा। ये सब देख करके पांडव महारथी आपकी सेना पर बाण बरसा करने लगे और आपकी सेना का खूब संहार करने लगे। संजय कहते हैं, महाराज, मद्रराज शल्य जब युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे, उस समय सात्यकी, भीमसेन, नकुल और सहदेव ने आकर शल्य को घेर लिया। उन्हें बींदना प्रारंभ किया। भीमसेन ने शल्य को पहले 6 बाणों से, सात्यकी ने 100 बाणों से, नकुल ने और 5 बाणों से, सहदेव ने 7 बाणों से बींदना चालू किया। इन महारथियों में से पीड़ित होकर सूरवीर शल्य थे, वो रणभूमि में डटे रहे। उन्होंने सात्यकी को 25, भीमसेन को 73 और नकुल के 7 बाण मारे। खूब घमासान युद्ध हुआ। सात्यकी ने क्रोध भरकर शल्य पर तोमर का प्रहार किया, एक-एक ने एक-एक प्रहार किया। भीमसेन ने सर्प के समान नाराज चलाया, नकुल ने शक्ति छोड़ी, जय और सहदेव ने गदा और धर्मराज ने शतग्नि, ऐसे एक-एक वार किया। 5 वारों को शल्य ने छु मंत्र से अर्थात उनको उसी समय में नष्ट कर दिया। सात्यकी को ये बात देख करके बड़ा क्रोध आया। तदनंतर युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे कि आज के युद्ध में मैं भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बात कैसे पूरी करूंगा कि शल्य को तुम मारो। यदि ऐसा न हो कि मद्रराज क्रोध में भरकर मेरी सेना का श्रृंगार कर डाले और उसके बाद मेरा भी श्रृंगार कर डाले, ऐसा न हो जाए। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज विचार कर रहे थे, मद्रराज क्रोध में भरकर मेरी सारी सेना का संहार न कर दे। दूसरी ओर अश्वत्थामा और अर्जुन का खूब घमासान युद्ध हो रहा था। जिस समय अर्जुन युद्ध कर रहा था सबसे पहले अपने गुरु पुत्र को बाणों से पूजित किया, ऐसे बाण लगाए ताकि उससे आज्ञा मांगी, और फिर उसके बाद घोड़े और सारथियों को मार दिया। अश्वत्थामा वहीं पर खड़ा रहा, हाथ में मूसल लेकर अर्जुन पर टूटा, अर्जुन ने उसके 7 टुकड़े कर दिए। अर्जुन के प्रहार से अत्यंत आहत होने पर भी द्रोण कुमार की घबराहट नहीं हुई, उसने पुरुषार्थ का पूरा भरोसा रखा। और दोपहर का वक्त था, अर्जुन का शत्रुओं के साथ महान संग्राम हुआ जो यमलोक की संख्या को बढ़ाने वाला था। कौरव योद्धाओं का पराक्रम देख अर्जुन अकेले ही वहां पर युद्ध कर रहे थे, उसके इनको लक्ष्य करके हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। संजय कहते हैं, महाराज एक ओर दुर्योधन और धृष्टद्युम्न में महान संग्राम जिसमें बाण शक्ति का दोनों तरफ से प्रयोग हो रहा है, दूसरी ओर शिखंडी अपने बाण प्रभद्रकों को साथ में लेकर कृपाचार्य और कृतवर्मा से युद्ध कर रहा है। राजा शल्य बाणों की झड़ी लगाकर भीमसेन सहित पांडवों के महाराज युधिष्ठिर पर श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसा ही उपस्थित हुआ दृश्य। शूरवीर नकुल ने अपने मामा शल्य पर बड़े जोर से धावा किया, बाणों की वर्षा से उन्हें आच्छादित किया, और इधर शल्य ने भी अपने भांजे नकुल के ऊपर शस्त्रों का प्रहार किया। ये मैंने बड़ा अद्भुत युद्ध देखा है, मैं अकेले ही पांडवों के समस्त योद्धाओं के साथ युद्ध करते हुए उनको देखा है। इस प्रकार से सब युद्ध कर रहे हैं और मेरी विजय होगी या मेरी मृत्यु होगी ऐसा अभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इधर कृष्ण भगवान ने अपने सब भाइयों को बुलाकर कहा, सुनो मैं अपने मन की बात सुनाता हूं। मेरे पहिए की रक्षा करने वाले माद्री कुमार नकुल, ये बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज, कृष्ण को भी बुला लिया, अर्जुन को भी बुला लिया, सबको बुला करके युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं ये बात। मैं अपने मन की बात बताता हूं, मेरे पहियों की रक्षा करने वाले माद्री कुमार नकुल और सहदेव अब क्षत्रिय धर्म का पालन करें, अपने मामा से अच्छी तरह से लड़ें। आज या तो शल्य मुझे मार डालेंगे या मैं शल्य को मार डालूंगा, मेरी इस बात को तुम लोग सत्य समझो। इस समय पहियों की रक्षा का भार सात्यकी और धृष्टद्युम्न पर है, सात्यकी दाएं पहिए की ओर और धृष्टद्युम्न बाएं पहिए की ओर रहे, अर्जुन पृष्ठ भाग में रक्षा में रहे और भीमसेन मेरे आगे आगे चले। ऐसी व्यवस्था हो जाए तब फिर इस समर में मैं शल्य किसी से भी युद्ध कर सकता हूं। राजा की आज्ञा पाकर महाराज दुर्योधन ने सब प्रकार का प्रबंध कर दिया। इधर युधिष्ठिर जी ने विजय अथवा मृत्यु की प्रतिज्ञा करके मद्रराज पर चढ़ाई कर दी। दुर्योधन और इधर भीमसेन भिड़ गए। भीमसेन ने शक्ति का प्रहार किया, दुर्योधन की छाती में वो लगा दी, मूर्छित होकर वो गिर पड़ा। दुर्योधन के मोहाच्छन्न हो जाने पर भीम ने क्षुरप से उसकी सारथी की गर्दन उड़ा दी। सारथी के मरते ही उसके घोड़े जोर से भागने लगे। उस समय हाहाकार मच गया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा आपके पुत्रों को बचाने के लिए दौड़ रहे थे। युधिष्ठिर महाराज इधर शल्य से बड़ा घमासान युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते युधिष्ठिर जी ने उसका कवच काट दिया, बाण से युधिष्ठिर का धनुष उसने काट दिया। तत्पश्चात युधिष्ठिर के सैनिकों ने युद्ध प्रारंभ किया। राजा युधिष्ठिर की ऐसी दशा देखकर भीमसेन बड़े वेग से शल्य के सामने आए। उस समय मद्रराज शल्य हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से कूद पड़े और ढाल तलवार से युद्ध करते हैं। तत्पश्चात शल्य युधिष्ठिर की ओर आगे बढ़े, युधिष्ठिर शल्य की ओर आगे बढ़े। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के कथानुसार मन ही मन शल्य के वध का निश्चय किया और रत्न जटित सुवर्णमय दंड वाली एक शक्ति हाथ में ली। फिर क्रोध में जलती हुई आंखें उठाकर उन्होंने महामद्रराज को देखा। उस समय मद्रराज शल्य धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ने पर भस्म नहीं हुआ और वहीं सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये हुई कि भगवान उसको देख रहे हैं शल्य को, परंतु उसका वध नहीं हुआ। लहूलुहान होकर फिर अंत में युधिष्ठिर के द्वारा चलाए हुए रथ से वो लहूलुहान होकर शल्य मारा गया। शल्य के मर जाने के बाद उसका छोटा भाई आया, युधिष्ठिर ने उसका भी सिर काट दिया, रथ से नीचे उतर गया। सेना में भगदड़ मच गई। अब भागते हुए सेना को कौन किस प्रकार से रोके, क्योंकि इधर भीमसेन और दुर्योधन का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। कृतवर्मा को रथहीन देख कृपाचार्य ने उसे अपने रथ पर बैठाया। ऐसे करके बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इसी बीच में कृतवर्मा भी दूसरे रथ बैठकर आ पहुंचा और युधिष्ठिर ने चार बाणों से कृतवर्मा के घोड़ों को घायल कर दिया और उसके सारथी को यमलोक में पहुंचा दिया। ये सब देख करके सब बड़े प्रसन्न हो गए। अश्वत्थामा ने उसे अपने रथ पर बैठाया और युधिष्ठिर से दूर ले गए। इस प्रकार से शल्य के मर जाने के बाद कौरव सेना में पांडवों की तरफ से बड़ी भयंकर उत्पात की स्थिति हुई और आपके पुत्र अन्याय से इस प्रकार जो शेष युद्ध था वो युद्ध हुआ। युधिष्ठिर के द्वारा शल्य के मारे जाने पर पांडव लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने नगाड़े बजाए। सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ नगाड़े सुने और पांडव सेना में बड़ी प्रसन्नता की गूंज हो गई। इस प्रकार शल्य भी आज मारा गया। कल की जो कथा है वो संवाद प्रधान कथा है। युद्ध तो होगा पर ऐसा संवाद खूब होगा उसमें। बड़ी आपस में बातें चीत भी होगी। शकुनी भी कल मर जाएगा ऐसा लगता है। कल आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।